ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटेकोशी बाढ़ प्रभावितों के उद्धार और लापता लोगों की खोज और व्यवस्थित बनाने के लिए नेपाल पुलिस ने टिमुरे से त्रिवेणी तक विशेष अभियान किया शुरू। बाढ़ में मारे गए लोगों की पहचान के लिए 3065 डीएनए नमूने किए गए एकत्र। हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम तथा आपदा न्यूनीकरण के लिए नेपाल और चीन के बीच सहयोग आवश्यक है, परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल का कथन। सल्यान में हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत। और दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। सम्मेलन का उद्देश्य किसी के खिलाफ होना नहीं बल्कि अलग पहचान बनाना है, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कथन। अब समाचार विस्तार से। भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित लोगों के उद्धार तथा लापता लोगों की खोज को व्यवस्थित बनाने के लिए नेपाल पुलिस ने रसुआ के टिमुरे से नवलपरासी के त्रिवेणी तक के क्षेत्र में विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत खोज तथा उद्धार में कुत्तों का इस्तेमाल, होल्डिंग सेंटर का प्रबंधन, समुदाय पुलिस साझेदारी कार्यक्रम, अपराध नियंत्रण तथा अनुसंधान, राहत वितरण तथा पुनर्स्थापना, डीएनए प्रोफाइलिंग और यातायात प्रबंधन जैसे विषयों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। बाढ़ के कारण भोटेकोशी और त्रिशूली के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर बह गए या लापता लोगों के जीवित होने की संभावना को प्राथमिकता देते हुए उनके उद्धार तथा खोज के लिए संबंधित इकाइयों को निर्देश दिया गया है। मिले हुए शव या शरीर के अंगों का मुचुलका सहित आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उनका उचित प्रबंधन करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की संपत्ति, नकदी, सोने चांदी, बैंक कार्ड और महत्वपूर्ण सरकारी या व्यक्तिगत दस्तावेज मिलने पर उन्हें संबंधित पालिका को सौंपने का आग्रह किया गया है। भोटेकोशी बाढ़ में मारे गए लोगों की पहचान के लिए एकत्र किए गए डीएनए नमूनों की जांच तेज कर दी गई है। नेपाल पुलिस की केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला और खुमलटारी स्थित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट की प्रयोगशाला में डीएनए परीक्षण किया जा रहा है। नेपाल पुलिस के केंद्रीय प्रवक्ता वी नारायण काफले के अनुसार डीएनए जांच में भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के विशेषज्ञ भी सहयोग कर रहे हैं। अब तक मृतकों के 1286 और उनके परिजनों के 1779 कुल 3065 डीएनए नमूने एकत्र किए गए हैं। इनमें करीब 400 नमूनों की जांच पूरी हो चुकी है। शवों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण के अलावा फिंगरप्रिंट और तस्वीरों का मिलान भी किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस ने कोडिस और डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू किया है। डीएनए जांच को तेज करने के लिए हेचौरा में भी एक नई प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, जिसके एक सप्ताह के भीतर संचालन में आने की उम्मीद है। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद उत्पन्न होने वाली संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नेपाल पुलिस अस्पताल महाराजगंज ने नुआकोट में 5 बिस्तरों वाला स्थायी फील्ड अस्पताल शुरू किया है। त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के कारण त्रिशूली अस्पताल से संपर्क बाधित होने के बीच बाढ़ के बाद फैलने वाली संक्रामक बीमारियों को रोकथाम को ध्यान में रखते हुए नेपाल पुलिस ने बिदूर में 5 बिस्तरों वाला लेवल 1 अस्पताल संचालित किया है। नेपाल पुलिस अस्पताल में कार्यरत पुलिस नायब महानिरीक्षक दामोदर पौडेल के अनुसार अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से 2400 घंटे आकस्मिक सेवा, ओपीडी, वार्ड, प्रयोगशाला और दवाइयों सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्या सेवाएं आम लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने नेपाल चीन संबंधों को पारंपरिक सीमा प्रबंधन से आगे बढ़ाते हुए पर्यावरणीय सहयोग, जलवायु सुरक्षा, प्रविधि, व्यापार और पूर्वाधार पर आधारित रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। काठमांडू में आयोजित काष्ठ मंडप संवाद कार्यक्रम में उन्होंने हालिया भोटेकोशी बाढ़ का उल्लेख करते हुए कहा कि नेपाल और चीन की सीमा केवल राजनीतिक सीमा नहीं बल्कि साझा पर्यावरणीय नियति से जुड़ा क्षेत्र है। मंत्री खनाल ने हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम और भूस्खलन जैसी सीमा पार आपदाओं से निपटने के लिए वास्तविक समय के उपग्रह डेटा का आदान प्रदान, संयुक्त मौसम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हिमालय और दोनों देशों को अलग करने वाली बाधा की बजाय साझा पर्यावरणीय विरासत के रूप में देखा जाना चाहिए। कार्यक्रम में नेपाल के लिए चीनी राजदूत चांग माओमिंग ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग आवश्यक है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
घरभरी सिग्नल बलियो, अब इन्टरनेट छन छिटो भयो, नेपाल टेलिकम वाईफाई 6, सबैको रोजाई स्मार्ट मिक्स, एकैचोटी धेरै कनेक्सन, गेमिङ मा लो लेटेन्सी को मजा छ, स्ट्रीमिङ होस् वा भिडियो कल, स्टेबल सिग्नल सबै ठाउँ, नेपाल टेलिकम वाईफाई 6, स्ट्रङ परफर्मेन्स एभ्री मिक्स, वाइड कभरेज, सिक्युरिटी हाई, fast and stable always fly
Nepal Telecom Rashtrako Sanchar।
अब बाकी समाचार। सल्यान में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हुई है। त्रिवनी गांव पालिका 5, सिमक में बोलेरो जीप में 3 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 8 वर्षीय रेशम बुढ़ाथोकी, 18 वर्षीय विपना बुढ़ाथोकी और 50 वर्षीय दिली बहादुर वली शामिल है। दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। इसी तरह त्रिवेणी गांव पालिका 3, टाटके में मोटरसाइकिल दुर्घटना में करीब 35 वर्षीय जीता केसी की मौत हुई। पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल के पीछे बैठी केसी का दुपट्टा पिछले पहिए में फंस गया, जिस वजह से सड़क पर गिरकर घसीटती चली गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। भोटीकोशी बाढ़ से फुरके खोला पुल बह जाने के बाद वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल हो रहे परेवा टार मास्टार सड़क पर आज से समय निर्धारित कर एक तरफा यातायात शुरू किया गया है। जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक गलछी मास्टार से परेवा टार होते हुए धादिंग बेसी की ओर वाहन चलेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक धादिंग बेसी से परेवा टार होते हुए मास्टार गलछी की ओर वाहन चलेंगे। सड़क संकरी होने के कारण दोनों दिशाओं से एक साथ वाहन चलने में कठिनाई होने के बाद ये व्यवस्था लागू की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 2 दिवसीय 18वां ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो गया है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेताओं ने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार, बहुपक्षीय सहयोग, व्यापार और वैश्विक दक्षिण की भूमिका बढ़ाने पर चर्चा शुरू की है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है और समूह किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच रखता है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए सहमति के आधार पर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब ब्रिक्स की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने वैश्विक दक्षिण को केवल नियमों का पालन करने वाला नहीं बल्कि वैश्विक नियम बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाला पक्ष बनाने पर जोर दिया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटीकोशी बाढ़ प्रभावितों के उद्धार और लापता लोगों की खोज को व्यवस्थित बनाने के लिए नेपाल पुलिस ने टिमुरे से त्रिवेणी तक विशेष अभियान किया शुरू। बाढ़ में मारे गए लोगों की पहचान के लिए 3065 डीएनए नमूने किए गए एकत्र। हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम तथा आपदा न्यूनीकरण के लिए नेपाल और चीन के बीच सहयोग आवश्यक है। परराष्ट्र मंत्री सुशील खनाल का कथन। सल्यान में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत और 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। सम्मेलन का उद्देश्य किसी के खिलाफ होना नहीं बल्कि अलग पहचान बनाना है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।